मोक्षमार्गस्यनेतारं भित्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जीव और अजीव का विवरण हुआ। अब क्रम प्राप्त आश्रव पदार्थ, ये ध्यान देने योग्य विषय है कि तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्त्वम, वहाँ पर उन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था कि तत्व सात है, और एक एक अध्याय में वो पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं। तो तत्व और पदार्थों में अंतर है। पद सुप्तिगंतम पदम, व्याकरण में पद की परिभाषा यह है कि जिसमें सुप आदि प्रत्यय होते हैं अथवा तिंग आदि प्रत्यय होते हैं, उस शब्द रचना को पद कहते हैं। और पदार्थ शब्द जो होता है वो उस पद का जो अर्थभूत विषय है, जो वाच्य है, जैसे जीव एक पद है जीवः, तो उसका पदार्थ क्या बनेगा? जीव नाम का जो पदार्थ है, द्रव्य है, वो तो अभी आश्रव पदार्थ का व्याख्यान है। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वचन और मन, क्रम ऐसा इसलिए दिया कि काय योग सब जीवों के पास होता है, एकेंद्रीय जीवों के पास अन्य योग नहीं होते, केवल काय योग होता है। फिर त्रस जीवों में वचन योग होता है, द्विंद्रिय आदि में वचन योग होता है, और असैनी पंचेंद्रिय जीवों तक मनोयोग नहीं होता क्योंकि मन नहीं है, और सैनी पंचेंद्रियों से मनोयोग प्रारंभ होता है। इसलिए काय वांग मनः कर्मी, कर्म का अर्थ होता है उसकी चेष्टा। वास्तव में देखा जाए तो अगर धवल ग्रंथ के अनुसार विचार करते हैं तो चेष्टा को उन्होंने योग नहीं कहा है, लेकिन यहाँ कार्य में कारण का उपचार करके योग कहा जा रहा है। ऐसा न्याय होता है असली में कि कभी कभी कोई कथन ऐसा लगता है कि उसमें अलग है इसमें अलग है, तो वास्तव में अलग नहीं होता, वो एक एक दृष्टि से वैसा कथन किया जाता है। कार्य में कारण का उपचार और कारण में कार्य का उपचार भी होता है, जैसे ये बिजली के वो ट्रांसफार्मर या फिर वो लगे रहते हैं ना, उसके ऊपर एक ऐसे एक वार्निंग का चित्र बना रहता है, कॉशन लिखा रहता है, सावधान, और वहां खोपड़ी बनी होती है, तो उसका अर्थ है कि मौत, चेतावनी ये है कि यहां मौत है, वहां मौत नहीं है, पर मौत का कारण है। तो ये क्या हुआ? कारण में कार्य का उपचार हुआ है। अभी कारण है वहां पर, लेकिन फिर भी जो उसका कार्य है मृत्यु, उसको ही उसमें कारण में उपचरित करके, कार्य का कारण में उपचार करके मौत कह देते हैं। और यहां पर क्या है, योग में, योग में धवल ग्रंथ में बताया कि जो आत्मा में अंतरंग एक उद्यम होता है, एक प्रयत्न होता है, जिस प्रयत्न के फलस्वरूप ये मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, तो बोले कि ये प्रवृत्ति जो है वो चेष्टा है, वो क्रिया है, और क्रिया योग नहीं है, बल्कि क्रिया को प्रारंभ करने वाला जो प्रयत्न है वो योग है। लेकिन चूंकि उस प्रयत्न का कार्य प्रवृत्ति है, तो कार्य में कारण का उपचार करके, ये तत्वार्थ परंपरा में जो योग बताया है, मन वचन का है कि प्रवृत्ति को योग कह रहे हैं। और वहां आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में ये बताया कि योग तो एक ही होता है एक काल में, प्रवृत्तियां तीनों हो सकती हैं, क्योंकि योग शीघ्र गति से परिवर्तित हो सकता है। काय योग हो गया, वचन योग हो गया, मनोयोग भी हो गया। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं, वचन प्रयोग भी कर रहे हैं, शरीर भी हिल रहा है, तो ये प्रवृत्तियां देखिए आप, साथ में अभी हम बोलते भी जा रहे हैं, शरीर भी हिल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, तो ये प्रवृत्ति है। जबकि योग एक काल में एक रहेगा, तो इस प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाला जो प्रयत्न है वो योग है। जैसे गाड़ी चलती है तो इंजन काम करता है, पर अपन स्पीडोमीटर को देख करके बोलते हैं कि गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही है, जबकि उसका ओरिजिनल जो अंतरंग पावर है वो वहां पर है, भीतर है। तो ये योग काय वांग मन कर्म एक साथ ही है, काय वांग मन कर्म, काय वचन और मन का जो कर्म यानी प्रयत्न पुरुषार्थ, वो योग है। योग शब्द के कोश में 32 अर्थ हैं, और जैनागम में उन 32 अर्थों के अतिरिक्त ये अर्थ भी है, मन वचन काय का जो प्रयत्न है वो भी योग है। और पुरुषार्थ शब्द से कर्म का अर्थ पुरुषार्थ होता है ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, पुरुषार्थ भी तेरा, पुरुषार्थ पर ही तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदा न चल, भाग्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वहां पर कर्म का अर्थ पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ को अगर अपन अंतरंग प्रयत्न के रूप में ले लें, तो उस अपेक्षा से वो बात घटित हो भी सकती है। पर अभी देखिए आप आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, कर्म क्रिया इत्यनर्थांतरम, कर्म का अर्थ क्रिया है, प्रवृत्ति है। काय वांग मनसांग कर्म, काय वांग मन कर्म, योग इति आख्यायते, इत्याख्यायते, आत्म प्रदेश परिस्पंदो योग, आत्म प्रदेश में जो एक हलचली होती है, परिस्पंद होता है, वो योग है। तो स निमित्त भेदा त्रिधा विद्यते। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि निमित्त के भेद से वो तीन भेद को प्राप्त हो जाता है, आत्म प्रदेश का परिस्पंद, काय योग वाग योग मनोयोग इति तद यथा, उसको खुलासा कर रहे हैं। वीर्यांतराय क्षयोपशम सद्भावी, वीर्यांतराय नाम का एक कर्म होता है, तो उसका क्षयोपशम होने पर वीर्य, अपना जो वीर्य शक्ति होती है आत्मा में, वो काम करती है। तो वीर्यांतराय का क्षयोपशम हो, और औदारिक आदि सप्तविध काय वर्गणान्यतम आलंबना अपेक्षया आत्म प्रदेश परिस्पंद काय योग। अब औदारिक आदि जो 7 प्रकार का शरीर है, औदारिक औदारिक मिश्र, वैकरिक वैकरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, तेजस और कार्मण। तो उनसे संबंध रखने वाली काय वर्गणाएं हैं जिनको आहार वर्गणा कहते हैं। तो उनमें से किसी एक का आलंबन जिसमें अपेक्षित है, उस अपेक्षा से होने वाला आत्म प्रदेश का परिस्पंद काय योग है। अर्थात इन वर्गणाओं के निमित्त से अगर आत्म प्रदेश में परिस्पंद हो रहा है तो उसको काय योग कहेंगे। और शरीर नाम कर्मोपादाय करी शरीर नाम कर्मोदयापादित वाग वर्गणावलंबे वाग वर्गणालंबने सति। और शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त जो वचन वर्गणा का आलंबन है उसका होने उसके होने पर वीर्यांतराय मत्यक्षराद्यावरण क्षयोपशमापादित मापादितान मापादिताभ्यंतर वाग लब्धि सन्निधाने। वीर्यांतराय के क्षयोपशम से और मत्यक्षर आदि मति ज्ञान में और फिर अक्षर श्रुत ज्ञान में ऐसे बहुत सारे भेद हैं ज्ञान आवरण के, उनका भी क्षयोपशम साथ में होने पर, क्योंकि वचन जो होता है वो इनके क्षयोपशम से होता है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो अभ्यंतर वचन लब्धि वचनों की शक्ति उसके सानिध्य में वाक् परिणामाभिमुखस्य आत्मनः प्रदेश परिस्पंदः। वचन रूप परिणाम के अभिमुख वचन रूप पर्याय के अभिमुख आत्मा के प्रदेश का परिस्पंदन जो होता है वो वाग योग है। बिल्कुल ठीक है, ये धवला से प्रतिकूल नहीं है ये वर्णन, क्योंकि अंतरंग परिस्पंद की ही बात कर रहे हैं आचार्य महाराज। तीनों में आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित हो रहे हैं, बस आलंबन अलग अलग है। काय के आलंबन से परिस्पंद हो रहा है तो काय योग है, वचन के आलंबन से हो रहा है तो वचन योग है, और फिर अब मन की बात कर रहे हैं। अभ्यंतर वीर्यांतराय नो इंद्रिय आवरण क्षयोपशमात्मक मनोलब्धि सन्निधाने। अंतरंग में वीर्यांतराय और मन संबंधी मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप एक मनोलब्धि होती है, वो सैनी जीवों के पास होती है, मन की उपलब्धि उनको होती है। तो उसके होने पर बाह्य निमित्त मनोवर्गणालंबने च सति। और बाह्य में जो मनोवर्गणा नाम का एक पुद्गल स्कंद है सर्वत्र, जैसे वर्गणाएं होती है ना, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, उसमें से 5 वर्गणाएं ग्राह्य होती है जीव के द्वारा, 18 वर्गणाएं अग्राह्य होती है। तो ग्राह्य वर्गणाओं में एक मनोवर्गणा है, तो उसका आलंबन होने पर दोनों बातें जरूरी है, एक लब्धि भी होना और आलंबन भी होना वर्गणा का, तब जो मन परिणामाभिमुखस्य आत्मना परिदेश परिस्पंद है। मन रूप परिणमन मन रूप पर्याय के अभिमुख आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंद होता है वो मनोयोग है, मनोयोग है। क्षयेपि क्षय हो जाने पर भी त्रिविध वर्गणापेक्ष संयोग केवलिना आत्म प्रदेश परिस्पंदो योगो वेदितव्य। 3 प्रकार की वर्गणा अपेक्षित है जिसमें ऐसा आत्म प्रदेश संबंधी परिस्पंद संयोग केवली भगवान का भी योग जानना, उनमें भी योग होता है ना संयोग केवली भगवान, बस उस उनमें क्या है कि ये भाव मनोयोग नहीं हो पाएगा, द्रव्य मनोयोग होगा, क्योंकि द्रव्य मन है उनके पास। जो पौद्गलिक एक रचना होती है हृदय में कमलाकार होती है, मनोवर्गणा के आलंबन से तैयार होती है, तो उसके निमित्त से होने वाला द्रव्य मनोयोग रहेगा, लेकिन भाव मनोयोग जो होता है वो क्षयोपशमिक ज्ञान होता है। भाव भाव मन क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, तो क्षयोपशमिक ज्ञान रूप भाव मन तो है नहीं वहां, क्षय ज्ञान है केवल ज्ञान में। तो इसलिए भाव मन संबंधी वहां पर जो क्षयोपशमिक ज्ञानात्मक भाव मन है उसका अभाव होने से वो घटित नहीं होगा। आहा, अब कोई कहते हैं अभ्युपगत आहित त्रैविधि क्रिया क्रियो योग। 3 प्रकार की क्रिया रूपता को जिसने प्राप्त किया है ऐसा योग हमने स्वीकार किया। प्रकृत इदानीं निर्दिष्टतां किन लक्षण आश्रव इत्युच्यते। प्रकरण तो आश्रव अधिकार का है, आश्रव पदार्थ का है, तो फिर इस प्रकरण में अब आश्रव किन लक्षणों वाला है, आश्रव के चिन्ह क्या है, इसका निर्देश किया जाए इत्युच्यते। इसलिए कहते हैं, कहा जाता है, योयम योग शब्द शब्दाभिधेय संसारिणः पुरुषस्य, जो योग शब्द का वाच्य है संसारी जीव के, संसारिणः पुरुषस्य आत्मनः, पुरुष का अर्थ आत्मा है, संसारी आत्मा के जो योग शब्द का वाच्य, यानी योग रूप जो आत्मा में होने वाली जो घटना है, वो स आश्रव, वो आश्रव यानी वो प्रयत्न हुआ आत्मा में, कर्म आ गया, प्रवृत्ति हो या ना हो बाद की बात है, प्रयत्न आश्रव है। यथा सरस सलिलावाहिद्वारम तदाश्रव कारणत्वात् आश्रव इत्याख्यायते। जैसे सरोवर में ऐसे पानी के प्रवेश द्वार होते हैं, वहां से पानी अंदर आता है और तालाब में भर जाता है, तो प्रवेश द्वार को आश्रव कहते हैं। तथा उसी प्रकार योग प्रणालिकया आत्मन कर्म आश्रवति, योग की प्रणालिका के द्वारा अर्थात योग के प्रवाह द्वार के द्वारा आत्मा के पास कर्म आश्रवित होते हैं, प्रविष्ट होते हैं, योग इसलिए इति योग आश्रवति व्यपदेश मरति, इसलिए योग आश्रव इस संज्ञा को प्राप्त होता है। आह कर्म द्विविधम पुण्यम पापं चेति, कोई कहता है कि कर्म के दो भेद हैं, पुण्य और पाप, तस् किम अविशेषेण योग आश्रवण हेतु राहुस्वदस्ति कश्चित् प्रति विशेष इत्यत्र उच्यते। क्या समान रूप से योग पुण्य और पाप का आश्रव करता है, कोई भी मनोयोग, कोई भी वचन योग, कोई भी काय योग, तीन योग है, तो इन तीन योग से पुण्य और पाप दोनों आते हैं? तो ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य कहते हैं कि कश्चित कोई अंतर है दोनों में, पुण्य और पाप के आगमन में कोई अंतर है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ योग पुण्य का आश्रव है और अशुभ योग पापाश्रव है। तो क शुभ योग को वा अशुभ शंकाए, शुभ योग क्या है अशुभ योग क्या है? तो उत्तर देते हैं, प्राणात पातादत्तादान मैथुन आदि रशुभ, प्राणात पातादत्तादान मैथुन आदि रशुभ काय योग। तीनों योग के भेद बता रहे हैं। प्राणातिपात का अर्थ होता है किसी के प्राण का अतिपात अर्थात विनाश करना, फिर अदत्तादान का अर्थ होता है चोरी करना, मैथुन का अर्थ होता है अब्रह्म कुशील का सेवन करना, आदि काय योग अशुभ, इनको आदि लेकर के जो काय योग होते हैं वो अशुभ काय योग है। अर्थात इनके पूर्व जो अंतरंग में परिस्पंद होता है, प्रयत्न होता है, तो वो अशुभ है। अनृत भाषण परुषा सभ्य वचनादि अशुभ वाक योग, फिर झूठ बोलना, कठोर बोलना, असभ्य वचन आदि बोलना, ये अशुभ वचन योग है। वद चिंतन ईर्ष्या सूयादि अशुभ मनोयोग, वध का विचार करना, ईर्ष्या करना, असूया जलना आदि जो है वो अशुभ मनोयोग है। ततो विपरीत शुभ, उनसे विपरीत शुभ योग है। अब देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, सावधानी से सुनना। कथं योगस्य शुभाशुभत्वं, योग में शुभ और अशुभ पना कहां से आ जाता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभ, शुभ परिणामों से रचा हुआ जो योग है वो शुभ है। अर्थात परिणाम जिसको प्रवचन सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में उपयोग कहते हैं, जिसको भाव पावड़ आदि में भाव कहते हैं। परिणामों को संभालो, क्या अर्थ हुआ? भावों को संभालो। तो परिणाम, भाव और उपयोग ये एकार्थवाची शब्द हैं। यहां आचार्य कह रहे हैं कि शुभ परिणामों से बनाया गया या बना हुआ योग शुभ योग है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे आटे से रोटी बनती है, तो रोटी का कारण क्या हुआ? आटा। और आटे का कार्य क्या हुआ? रोटी, है ना? कॉज एंड इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कारण और कार्य। उसी प्रकार यहां कह रहे हैं कि परिणाम रोग योग का रचयिता है और योग परिणाम की रचना है। तो शुभ परिणाम जिस योग को रचता है वो शुभ योग होता है। ये बात हो गई। फिर अशुभ परिणाम निवृत्तश्चाशुभ और च, अशुभ परिणामों के द्वारा जो रचा जाता है वह योग अशुभ योग है। अब आप पूछेंगे कि इसमें जो हम कह रहे थे कि बहुत सावधानी से सुनने वाला विषय है, तो ऐसी क्या विशेष बात है इसमें? विशेष बात यह है कि इससे ये प्रमाणित होता है कि योग और उपयोग कभी परस्पर भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कारण कार्य भाव है। जैसा उपयोग होगा वैसा योग होगा। और इसकी पुष्टि अपन एक ग्रंथ से और देख लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से तो बिल्कुल सिद्ध है कि कभी भी योग और उपयोग भिन्न नहीं हो सकते, वो समान ही होते हैं। अब कोई कहे कि धर्मानुष्ठान करने वाला व्यक्ति है, उसका योग अशुभ कैसे हो सकता है? अगर इरादा अशुभ है तो उसका योग अशुभ है। कोई माला फेरने बैठा है, मायाचारी के साथ बैठा हुआ है, उसका लक्ष्य खोटा है, तो फिर उसका योग माला फेरते हुए भी, माला फेरना प्रवृत्ति है, योग नहीं है। माला फेरना उसकी बाह्य प्रवृत्ति है, लेकिन अंतरंग जो योग है वो जिस परिणाम से बना हुआ है, वो परिणाम अगर अशुभ है तो वो योग अशुभ है। उड़द की दाल से बेसन के भजिए नहीं बनते, समझ में? दाल से खीर बनती है, बनती होगी, लेकिन भात वाली खीर दाल से नहीं बनती, ये कह रहे हैं। अपने को कुछ अपनी बात नहीं चल रही यहाँ, केवली की बात है। केवली बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अपन अपने बारे में अभी मत जोड़ो यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। अभी तो जो वहां से सुनने मिल रहा है वही सुन लो। अब देखिए प्रवचन सार में क्या लिखा, नहीं चलता ना, अपने को कैसे पता चले? अपन जब कार्य देखते हैं तब लगता है कि कितने बुरे भाव होंगे मेरे जब मैंने ये काम किया, और कभी कभी स्थूल भाव होने से पकड़ में आते, सूक्ष्म नहीं आते पकड़ में। ये देखिए प्रवचन सार में 206 नंबर की गाथा है, गाथा क्रमांक 206 में भावलिंग का वर्णन है श्रमण के, और द्रव्यलिंग का वर्णन 205 नंबर गाथा में, गाथा क्रमांक 205 में। तो भावलिंग का वर्णन करते हुए टीका में देखिए क्या लिखा है। तथा आत्मनो यथा जात रूप धरत्वापसारित यथा अयथा जात यथा जात रूप धरत्वापसारिता यथा जात रूप धरत्व प्रत्यय मोह राग द्वेषादि भावना भावानाम भावादेव। दिगंबर मुद्रा के माध्यम से दूर हो चुका है समस्त मुद्रा धारण करने में कारणभूत मोह राग द्वेष आदि भावों का, जिसमें अभाव हो गया है, दिगंबर मुद्रा से दूर हुए हैं समस्त मुद्रा में कारणभूत मोह राग द्वेष आदि, और उन भावों का अभाव होने के कारण ही तद भाव भाविनो मोह राग द्वेष के अस्तित्व में होने वाले ममत्व कर्म प्रक्रम परिणामस्य, ममत्व रूप जो चेष्टा है उसके पुरुषार्थ में सहायक परिणाम होता है, उसके शुभ शुभाशुभोप रक्तोप योग तत्पूर्वक तथाविद योगा शुद्धि युक्तत्वस्य परद्रव्य सापेक्षत्वस्य चा भावात्। उच्च कोटि की संस्कृत लिखते हैं अमृतचंद सुई जी, बोले ममत्व रूप जो क्रिया है मेरा मेरा मेरा, उसका प्रक्रम करने में जो परिणाम होता है उसके शुभ और अशुभ रंगे हुए उपयोग होते हैं, और तत्पूर्वक उन उपयोग से तथाविध योग अशुद्धि, शुभोपयोग से शुभ योग की प्रवृत्ति होगी और अशुभोपरक्त उपयोग से अर्थात अशुभोपयोग से तत्पूर्वक उसके कारण होने वाला तथाविध योग, उस प्रकार का योग होगा अशुभ योग। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट कथन है कि जैसा उपयोग होगा वैसा ही योग होगा, क्योंकि अभी अपन ने सर्वार्थ सिद्धि में जो पढ़ा तो उस पर कोई प्रश्न उठा सकते हैं, किसी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि वो तो सर्वार्थ सिद्धि कोई अध्यात्म ग्रंथ नहीं है, तो अध्यात्म ग्रंथ वाला जो उपयोग है उसको यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये लीजिए अध्यात्म ग्रंथ वाला उपयोग आ गया, अब बोलो क्या बोलना है। प्रवचन सार में अध्यात्म ग्रंथ का उपयोग है वो यहाँ पर बता दिया। तो इस तरह ये उपयोग और योग में वैषम्य में नहीं होता, कभी भिन्नता नहीं होती, दोनों एक ही रहते हैं हमेशा। बगुला ध्यान मुद्रा में खड़ा होता है पर उसका उपयोग अशुभ ही होता है, समझ गए क्यों? क्योंकि उपयोग अशुभ है, तो उपयोग की अशुभता क्या है? अशुभ उपयोग किसको कहते हैं? भाव पावड़ की 76 नंबर गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं असुहम च अट्टरुद्धम आर्त रौद्र ध्यान को अशुभ उपयोग कहते हैं। अशुभ भाव कहते हैं। शुभ धम्मम जिणवरिंदे, शुभ शुभोपयोग धर्म धन को कहते हैं। और जो निर्विकल्प धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब फिर ये प्रश्न आएगा कि भाई अध्यात्म ग्रंथों में ये भी लिखा है, जैसे बृहद द्रव्य संग्रह की 34वीं गाथा की टीका में, प्रवचन सार की 9वीं और 181वीं गाथा की टीका में गुणस्थान बताए हैं कि उपयोगों के ये गुणस्थान है। पहले से तीसरे गुणस्थान तक तारतम्य से अशुभ उपयोग है, चौथे से छठे तक तारतम्य से शुभ उपयोग है, सातवें से बारहवें तक तारतम्य से शुद्ध उपयोग है, और बारहवें के ऊपर केवल ज्ञान होने पर शुद्ध उपयोग का फल है, ये कथन आया है। तो फिर इसमें कैसे तालमेल बनेगा? बोले आर्त्र रौद्र ध्यान तो पांचवें गुणस्थान तक होते हैं लेकिन अशुभ उपयोग तो तीसरे तक होता है। बहुत सुंदर बात है, इसको अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो समाधान निश्चित प्राप्त हो जाएगा। पर आग्रह पूर्वक अगर केवल शब्दों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर जीवन गुजर जाने के बाद भी धारणा नहीं बदल सकती। अपन उन्हीं आचार्य के वचनों का पूर्वापर अवलोकन करके देखें कि आगे पीछे अन्यत्र दूसरी टीकाओं में उन्होंने क्या किया है, क्या कथन किया है उपयोग के बारे में। क्या आप जो अर्थ लगा रहे हैं वो आचार्य महाराज को मान्य है कि नहीं? पहले से तीसरे तक अशुभ ही होता है, ये आचार्य जयसेन स्वामी का ये अभिप्राय है, ये प्रश्न है। देखो स्वाध्याय करते समय बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद ऐसा लगता है कि हम जो समझ रहे हैं वो सब सही धारा में समझ रहे हैं, पर जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता तब तक ये निर्णय करना कठिन है कि आपकी धारा कहां तक सही है। हो सकता है तुलनात्मक अध्ययन करने पर, मान लो आप समय सार में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ करके आप धारणा बनाते हैं, फिर प्रवचन सार में थोड़ी बात अलग आती है, पंचास्तिकाएं में थोड़ी अलग आती है, तो क्या आप ये कहोगे कि समय सार वाली आत्मा अलग है, प्रवचन सार वाली आत्मा अलग है, पंचास्तिकाएं वाली आत्मा अलग है, ऐसा कहोगे? रत्नकरंड वाला सम्यक दर्शन अलग है? अलग है तो भाई ये बता दो जरा साथ में कि रत्नकरंड वाला सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में होता है? गुमट सार वाला अलग है सम्यक दर्शन? ठीक है, गुमट सार वाला सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान से बताया है, तो आप ये बता दो रत्नकरंड वाला सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान से है? क्या चौथे गुणस्थान के नीचे है? एक ही विषय का वर्णन भिन्न भिन्न आचार्य भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं लेकिन वस्तु एक ही रहती है। वो सम्यक दर्शन जो एक भाव है आत्मा का वो वही रहेगा सिद्धांत से देखने पर, उन्हीं गुणस्थानों में रहेगा जिन गुणस्थानों में उस भाव का अस्तित्व है। जहां उसका अस्तित्व नहीं है वहां पर किसी भी परिभाषा से अपन मनमाना अर्थ नहीं लगा सकते कि नहीं चरणानुयोग की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? यानी आप ये कहना चाहते हो कि द्रव्यानुयोग में केवली भगवान ने कुछ और कह दिया और चरणानुयोग में उससे उल्टा कह रहे हैं, ऐसा है क्या? सभी अनुयोगों का तालमेल बना करके समीचीन अर्थ निकालने पर ही शास्त्रों का मर्म पकड़ में आता है। तो जैसे वेद वैषम्य में होता है, शरीर स्त्री का है या पुरुष का है लेकिन भाव उससे विपरीत है, उसका उल्लेख आगम में आता है, घुमटसार जीव कांड में लिखा है, पाएण समा कहीं विषमा, प्रायः समान रहते हैं। अधिकतर जीवों में देखोगे तो जैसा शरीर है वैसे ही भाव होंगे। अगर स्त्री का शरीर है तो भाव वेद भी स्त्री का रहेगा, पुरुष का शरीर है तो भाव वेद भी पुरुष का रहेगा। कहीं विषमा बोलते हैं, कहीं विषम भी हो सकते हैं। शरीर स्त्री का मिला लेकिन भाव पुरुष के होते रहते हैं, शरीर पुरुष का मिला है भाव स्त्री के होते हैं। ऐसे जीवन काल में कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो अपने सामने आते हैं कि जिनको देख करके लगता है कि अरे ये कैसा, इसकी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, उसकी चेष्टाओं को देख करके लगता है कि अरे ये तो कैसा, कैसी चेष्टा कर रहा है। तो ऐसा भी होता है, पर कर्म भूमि में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। तो योग और उपयोग कभी विषम नहीं होते, और भाव परिणाम और उपयोग, इन तीन शब्दों को आप मिला के चलो ना, और देखो आचार्य कुंदकुंद महाराज कह रहे हैं कि आर्तरौद्र ध्यान ही अशुभ उपयोग है। अब चाहे जहां भी हो, एक बात ध्यान से समझना कि सम्यक दृष्टि के उपयोग को शुभोपयोग तारतम्य से क्यों कह रहे हैं। तारतम्य का अर्थ क्या होता है? अनुपात, रेशियो, उसको तारतम्य कहते हैं। तो रेशियो से अपन देखते हैं तो फिर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि में अंतर पड़ जाता है। श्रद्धान भिन्न होने के कारण, विश्वास अलग होने के कारण भावों में अंतर आ जाता है। अब जब तक आपको ऐसे अंदर शंका है कि ये चोर है ये चोर है, तो आपके भाव अलग रहेंगे, और जब वो शंका दूर हो जाएगी तो आपके भाव अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार जीव है या नहीं है, ये सर्वज्ञ प्रणीत तत्व सम्यक है या नहीं है, ये जब तक शंका रहेगी तब तक मिथ्यात्व भाव रहेगा, और जब दृढ़ विश्वास हो गया कि ये जिनेन्द्र प्रणीत वचन है, अकाट्य है, अबाधित है, सत्य है, तो फिर आपके भाव बदल जाएंगे। तो भले असंयम हो, आर्त रौद्र ध्यान हो, लेकिन वो आर्त रौद्र ध्यान जो आर्त रौद्र ध्यान के प्रधान कार्य हैं, असुह गई अटेणया, निरय गई पुण रौद्र झाने, रानसार ग्रंथ में लिखा है पद्म सिंह मुनि ने कि तिरंच गति की प्राप्ति आर्त ध्यान से होती है, नरक गति की प्राप्ति रौद्र ध्यान से होती है। सम्यक दर्शन होने के बाद आर्त रौद्र ध्यान करते हुए भी इनकी प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि शुभ गति की प्राप्ति होती है। उस विवक्षा से तारतम्य लगाकर आचार्य कह रहे हैं कि शुभ वहां अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्त ध्यान का अभाव हो गया, जबकि अब परिणाम और उपयोग ये एक अर्थवाची है। अगर इस बात का प्रमाण आप चाहो तो फिर प्रवचन सार की 9वीं गाथा की टीका में देखना, वहां उपयोग शब्द है, और प्रवचन सार की 181वीं गाथा की टीका में देखना, वहां पर परिणाम शब्द है, और वाक्य वो ही के वही है। जो यहां पर उपयोग शब्द प्रयोग करके दिया हुआ है, वहां पर परिणाम शब्द का प्रयोग करके वो ही वाक्य दिया हुआ है। तो परिणाम और उपयोग अलग अलग नहीं है आचार्य जयसेन स्वामी की अपेक्षा। और फिर यहां आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने शुभ अशुभ उपयोग के बारे में और शुद्धोपयोग के बारे में बहुत कुछ कहा है, और भाव पावड़ में वो ये कह रहे हैं कि आर्त रौद्र ध्यान अशुभ भाव है, धर्म ध्यान शुभ भाव है। इतना सरल है ये विषय। आग्रह ना हो तो बहुत सरल है, आग्रह हो तो अभी भी अड़चन आएगी आपको, आपके अंदर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प शंका कुशंकाएं उत्पन्न होंगी कि नहीं आज तक हमने जो पढ़ा जो सुना और जिनके मुख से सुना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपको जिस पर विश्वास है उसके मुख से सुनी हुई बात को भले वो आगम से बाहर चली जाए आप छोड़ना नहीं चाहते, और जो बात विभिन्न शास्त्रों से स्थापित सत्य के रूप में सामने आती है उसको स्वीकार करने में घबराहट होती है। ये कौन सा भाव है ये समझना होगा। विचार करो ना, हम थोड़ी थोप रहे हैं आपके ऊपर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां जो कहा जा रहा है उसको आप अभी हाल गले अंदर बिल्कुल उसका घूंट पी लो, ऐसा नहीं कह रहे। ये तो झिनवाणी माता है, अपनी बात अच्छे से सामने रख रहे हैं। आपको जो समझ में आ रहा है उसमें लगाओ अपना पुरुषार्थ और देख लो क्या कह रहे हैं। न पुनः शुभाशुभ कर्म कारणत्वेन शुभोपयोग और अशुभोपयोग या शुभ योग और अशुभ योग, यहां योग की चर्चा है। शुभ योग शुभ कर्म के बंद का कारण है, अशुभ योग अशुभ कर्म के बंद का कारण है। पुण्य का कारण होने से जो योग है उसको शुभ नहीं कह रहे, पाप का कारण होने से जो योग है उसको शुभ नहीं कह रहे। शुभ योग पुण्य का आश्रय है, अशुभ योग पाप का आश्रय है, ये कह रहे हैं। दोनों में अंतर समझना। शुभ योग पुण्य का आश्रय कर रहा है, पर पुण्य का आश्रय कर रहा है इसलिए शुभ योग है ऐसा नहीं है। शुभ उपयोग से रचित है इसलिए शुभ शुभ योग है। बहुत भारी अंतर है दोनों में। शुभ योग होने का कारण उसका कारण है कि वो शुभ परिणामों से रचा जा रहा है इसलिए वो शुभ योग है, और उसका कार्य जो है वो पुण्याश्रव है। तो उसका कार्य पुण्याश्रव है इसलिए आप इसको शुभोपयोग कहो, ये आचार्य मान्य नहीं करते। पुण्य का आश्रय करा रहा है इसलिए ये शुभ योग है ऐसा नहीं कह सकते आप। ये शुभ योग है इसलिए पुण्य का आश्रय करा रहा है। कारण देखो आप कहां से कहां कारण लगाना है। प्रकाश है इसलिए दीपक है या दीपक है इसलिए प्रकाश है, तो ऐसा लगाओ। उल्टा क्यों लगा रहे हैं? यद्येवम् उच्यते, अगर ऐसा कहोगे तो शुभ योग एव न स्यात्, शुभ योग हो ही नहीं सकता। क्यों? शुभ योगस्यापि, क्योंकि शुभ योग के भी होते हुए ज्ञानावरण आदि बंध हेतुत्वाभ्युपगमात्। ये बात स्वीकृत है शास्त्रों में कि शुभ योग के साथ भी सब कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता ही रहता है, 24 घंटे चालू है। शुभ योग चल रहा है तब भी बंद हो रहा है। तो अगर आप ये कहोगे कि पुण्य का बंद है इसलिए ये शुभ योग है, तो नहीं, वो तो पाप का बंद भी हो रहा है फिर भी शुभ योग है। 10वें गुणस्थान तक के हो रहा है, 10वें गुणस्थान में 17 कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है, बंद होता है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, कितनी हुई? 14 हो गई। फिर यश कीर्ति का भी बंद होता है, उच्च गोत्र का भी बंद होता है, 7 वेदनीय का भी बंद होता है, तो 14 और 3, तो ये 17 कर्म प्रकृतियां 10वें गुणस्थान तक के बंद रही। तो इनमें केवल 3 पुण्य प्रकृति है, 7 उच्च गोत्र और यश कीर्ति, बाकी 14 पाप प्रकृतियां हैं। तो फिर बन ही नहीं सकता ना, क्या कहोगे आप, किसको योग कहोगे? तो इसलिए जो बंद हो रहा है उससे मत लगाओ, शुभ योग से पुण्य का बंद होता है ऐसा लगाओ। अशुभ योग होगा, आर्द्र उद्र ध्यान होगा, तो पुण्य का बंद नहीं होगा। फिर उसमें भी एक विभाग है, मिथ्या दृष्टि जीव को जब मंद कषाय होती है, शुभ लेशा होती है, तब आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में और समय सार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में दोनों स्थानों पर मिथ्या दृष्टि के भी शुभोपयोग स्वीकार किया। प्रवचन सार की 255 क्रमांक गाथा में और समय पाहुड़ ग्रंथ की गाथा हम निकाल के दे देते हैं आपको। चौहत्तर नंबर गाथा 74 समय सार की क्या लिखा है देखिए, पढ़ के सुना दे ताकि जो भी इसको सुनेंगे उनको प्रत्यय हो कि ये शास्त्र के वचन है। जिनके अंदर किंचित मात्र भी शंका हो उनके लिए ये पंक्ति हम पढ़कर सुना रहे हैं। कथंचित परिणामित्वे सति अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टिर जीवो। जीव और अजीव जो होते हैं वो कथंचित परिणामी परिणमन परिवर्तित होते रहते हैं और कथंचित स्थिर भी रहते हैं। अनादिकाल से जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, तो वो उनका नित्यत्व है और बार बार इनमें पर्यायें बदलती रहती है तो वो उनमें परिवर्तन कहलाता है। तो किसी अपेक्षा से परिवर्तनशील होने के कारण बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह विषय कषाय रूप अशुभोपयोग परिणामम करोति। विषय कषाय रूप अशुभोपयोग परिणाम करता है, या आर्द्रोद्र परिणाम हो गया। और कदाचित पुनः और किसी समय चिदानंदैक स्वभावम शुद्धात्मानं त्यक्त्वा। चेतना और आनंद ही है अद्वितीय स्वभाव जिसका, ऐसी निर्मल आत्मा को छोड़कर भोगाकांक्षा निदान स्वरूपम, भोग संबंधी आकांक्षा रूप जो निदान होता है उस रूप शुभोपयोग परिणामंच करोति। मिथ्या दृष्टि जीव शुभोपयोग परिणाम भी करता है। अब उसको आकांक्षा है तो फिर वो कुछ साधनाएं वगैरह भी करता है कि आकांक्षा की पूर्ति हो तो मैं थोड़ा बहुत जो भी मेरी समझ में आ रहा है वो धर्म कर लूं, क्योंकि धर्म से पुण्य होता है और पुण्य से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो वो उस निदान के साथ वैसी प्रवृत्ति करता है तो उस समय उसकी कषायें मंद हो जाती है। अंदर अभिलाषा जरूर रहती है लेकिन अभिलाषा जैसे भोग के समय रहती है वैसी तीव्र कषाय रूप अभिलाषा नहीं रहती है, सिर्फ एक लक्ष्य रूप रहती है। पर आज वो त्याग करता है और वो जो त्याग है उस समय उसकी लेशाएं शुभ हो जाती है और पुण्य का आश्रय होता है। आचार्य कहते हैं कि शुभोपयोग परिणाम भी करता है मिथ्या दृष्टि। तो फिर अब या तो फिर आप ये मानो कि आचार्य जयसेन स्वामी की स्मरण शक्ति बहुत दुर्बल थी, क्योंकि प्रवचन सार में उन्होंने मिथ्या दृष्टि में अशुभोपयोग कह दिया दो बार और यहां समय सार में वो मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग कह रहे हैं, ऐसा मान लो। पर ऐसा मानना क्या आपको ठीक लगेगा कि आचार्य महाराज भुलक्कड़ थे, उनकी याददाश्त खराब थी, ऐसा मानना उचित लगेगा? अरे एकदम साफ गणित है, अगर आग्रह छूट जाए ना तो सारी बातें एकदम साफ सुथरी है। जबरदस्ती जटिल बनाई गई है ये चर्चा, जटिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभोपयोग परिणाम मिथ्या दृष्टि करता है, ये 74 नंबर गाथा की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने स्वीकार किया है। तदा काले उस काल में द्रव्य भाव रूपाणाम, द्रव्य और भाव रूप पुण्य पापाश्रव बंध पदार्थानाम कर्तृत्व घटते। द्रव्य और भाव, पुण्य और पाप, इन पदार्थों का वो मिथ्या दृष्टि कर्ता बन जाता है। तो ये दोनों को लेकर के आचार्य कह रहे हैं, अशुभोपयोग परिणाम होता है तो पाप का कर्ता होता है, शुभोपयोग परिणाम होता है तो पुण्य का कर्ता होता है, ये कह रहे हैं। और जैसा उपयोग होगा वैसा योग होगा, जैसा योग होगा वो योगी तो आश्रव है और आश्रव जो है वो बंध का कारण है, तो वैसा बंध होगा, ऐसा है। अब प्रवचन सार में अगर देखना हो तो प्रवचन सार दिखा देते हैं। गाथा क्रमांक 255, रागो पसत्थ भूदु वत्थु विशेषेण फलति विवरीदम। जो शुभ राग होता है धर्मानुराग, वो आलंबन के भेद से अलग फल दे देता है। जिसके आलंबन से आप शुभ राग कर रहे हैं, वो आलंबन अगर दूषित होगा तो उसका फल वैसा मिलेगा, अगर आलंबन श्रेष्ठ होगा तो उसका फल वैसा मिलेगा। नाना भूमि गदाणी बीजाणि विशस्य काल में, क्योंकि भाव तो आपका शुभ है, वो आलंबन दूषित हो या शुद्ध हो, आपके भाव तो बिल्कुल निर्मल है, तो आपको पुण्य तो मिलेगा लेकिन उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के सामने जाने पर जो भाव होते हैं वो कारकलेश्वर बाहुबली स्वामी के सामने होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसलिए जो पुण्य का लाभ होता है वो दोनों स्थानों पर होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है, ये बता रहे हैं। उदाहरण दिया कि एक काली मिट्टी वाले खेत में आप बीज बोते हैं और एक मुरम वाली मिट्टी में बीज बोते हैं, तो दोनों की जो फसल होती है उसमें अंतर पड़ जाता है। और इसी प्रकार एक दृष्टांत और है कि यदि आप आपके शुभोपयोग का आलंबन कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप भगवान समझ रहे हो लेकिन उसमें भगवत्ता नहीं है, आप भगवान समझ रहे हो, ये आपका भ्रम है। और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप सामान्य समझ रहे हो लेकिन उसमें भगवत्ता है, तो दोनों की गई सेवा में जो अंतर होगा वो महान अंतर होगा। उदाहरण के लिए एक अभव्य मुनि को कोई भक्त भावलिंगी निकट भव्य मोक्षगामी आदि मानकर पूजता है, उनकी भक्ति करता है, सेवा करता है, आहार दान आदि देता है, तो भी उसको जो पुण्य संचित होता है वो उसको केवल कुभोग भूमि प्रदान करता है। सावधानी से सुन रहे हो, कुभोग भूमि ले जाता है। और एक ग्वाले का बच्चा एक रिद्धिधारी चारण रिद्धिधारी मुनि की रात भर सेवा करता है। ठंड थी, बर्फ गिर रही थी और मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे, वो बालक उनके ऊपर जो बर्फ गिर रही थी उसको हटाता था बार बार, सारी रात वो चारों तरफ अग्नि जला करके उनकी सेवा करता है। वो बालक मरण के उपरांत श्रेष्ठी पुत्र सुदर्शन होता है और सुदर्शन बनकर के पाटलिपुत्र से मोक्ष को प्राप्त होता है, जबकि उसको यह भी पता नहीं है कि मुनि है, पर शुभ भाव है। तो शुभोपयोग का आलंबन अगर उत्तम है तो फल उत्तम होता है, आलंबन अगर कनिष्ठ है तो फल कनिष्ठ होता है। ये महत्व की जानकारी है। यहां आचार्य कह रहे हैं भाव शुभ है, दोनों के भावों की जाति जो है वो एक है, पर भावों में जो तारतम्य है वो अलग है। तारतम्य का अर्थ होता है वही रेशियो वाली बात ही है, यानी जिसको इंटेंसिटी कह सकते हैं। दरअसल यहां पर ये बात जैन सिद्धांत की सामने आती है कि निमित्त में भी कोई ऐसी अचिंत्य शक्ति है जो अपनी कल्पना से परे है, कि कुछ ऐसे निमित्त होते हैं कि जिनके सानिध्य में लाख प्रयास करो आपको क्षायिक समय दर्शन नहीं हो सकता, और अगर कोई एकदम हुंडक संस्थान वाले और दुस्वर नाम कर्म के उदय वाले कोई ऐसे मुनि हैं जो श्रुत केवली है लेकिन उनकी आवाज कानों को अप्रिय है, उनका शरीर जो है वो सुंदर नहीं है, उनके ऐसे कर्मों का उदय है कि उनमें कोई आकर्षण नहीं है, यश कीर्ति का मंद उदय है उनमें, और एक ऐसे साधु हैं जो अभव्य हैं, 11 अंग के पाठी हैं, उनके पास बैठने वाले को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उनके पास बैठने वाले को क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है और इनके पास जाने वाले को क्षायिक हो रहा है। आ रही बात समझ में? बहुत हम बहुत दिल से आज ये सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बहुत मेहनत करके हमने ये चीजें वर्षों के परिश्रम के बाद ये निकाली है। इसको बहुत सम्मान से सुनना आप, अगर आपको उचित लगे तो, हम बांध नहीं रहे। क्या वो भक्त को मालूम ना हो, इसे यही तो बता रहे ना कि उसको मालूम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां ये बताया जा रहा है कि वो जिसकी आराधना कर रहा है वो आराध्य बाहर से कुछ और दिख रहा है, अंदर से उसकी परिणति केवल ज्ञान में कुछ और है। और ये देखिए आप, जो ऐसे मुनि हैं जो श्रुत केवली हैं, जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, जिनकी आवाज कर्कश है, जिनके हुंडक संसान यानी शरीर का आकार इतना खराब है कि बिल्कुल बेडौल आकृति है उनकी, लेकिन उनके पास बैठने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, और उनके जीवन भर सेवा करने वाले जो अभव्य मुनि है, उनके 11 अंग के पाठी है, उनके वचनों को सुनकर सम्यक्त हो जाएगा लेकिन क्षायिक नहीं हो सकता। ये फर्क है। तो शुभोपयोग दोनों का है, पर वो बीज के समान है। अगर आप अच्छी भूमि में बीज डालोगे, काली मिट्टी वाली, तो उसकी फसल अलग होगी, और अगर आप ऐसे मुरम वाली मिट्टी में डालोगे, रेत वाली मिट्टी में डालोगे, तो फसल अलग होगी। ये बताने का प्रयास है। और यहां पर आचार्य महाराज यही कह रहे हैं 255वीं गाथा में, अयम अत्रार्थ, इसका अर्थ यह होता है कि यथा जैसे जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भूमि विशेषेण तान्येव बीजानि भिन्न भिन्न फलम प्रयच्छन्ति, जिस प्रकार जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भूमियों के भेद से वे ही बीज, एक ही बोरे के बीज हैं, एक मुट्ठी आपने इधर डाली, एक उधर डाली, एक उधर डाली, तो वे ही बीज भिन्न भिन्न फलम प्रयच्छन्ति, अलग अलग फल देते हैं। जैसा फल यहां मिलेगा काले मिट्टी में वैसा वहां नहीं मिलेगा, अलग अलग फल देते हैं। तथा उसी तरह सैव बीज स्थानीय शुभोपयोग, उसी बीज के समान ये शुभोपयोग है। अपना जो भक्ति भाव आदि है वो शुभोपयोग है। वह भूमि स्थानीय पात्र भूत वस्तु विशेषेण, भूमि के समान जो पात्र हैं, अलग अलग प्रकार के जो साधु हैं, उनमें भेद होने के कारण भिन्न भिन्न फलम ददाति, अलग अलग फल देता है।
कौन?
शुभोपयोग। तेन किम सिद्धम? आचार्य महाराज लास्ट में प्रश्न कर रहे हैं कि इससे क्या सिद्ध हुआ, उससे क्या सिद्ध हुआ। तो उत्तर देते हैं, यदा जब पूर्व सूत्र कथित न्यायीन, पिछली गाथाओं में कहे हुए न्याय से सम्यक तो पूर्वक शुभोपयोगो भवति। सम्यक्त के कारण से उत्पन्न होने वाला शुभोपयोग होता है। क्या शब्द पर ध्यान देना, पूर्व शब्द का अर्थ आप देख लेना, तत्वार्थ वार्तिक में सर्वार्थ सिद्धि में पूर्व शब्द का अर्थ कारण होता है। तो सम्यक्त जिसमें कारण पड़ रहा है ऐसा शुभोपयोग जब होता है तब क्या परिणाम निकलता है, तदा मुख्य वृत्तिया पुण्य बंधु भवती। मुख्य रूप से तो पुण्य बंध होता है, परंपरा निर्वाणम च, और क्रमशः निर्वाण भी होता है उस शुभोपयोग से। नो चेत का अर्थ यदि वह शुभोपयोग सम्यक्त पूर्वक नहीं है, सम्यक पूर्वक नहीं है, कौन नहीं है, शुभोपयोग, तो फिर किस पूर्वक है, वो मिथ्यात्व पूर्वक है। तो कहते हैं कि पुण्य बंध मात्र में, मात्र पुण्य का बंध होता है। तो ये बात थी। तो यहां भी आचार्य महाराज वही जैसे ना, आचार्य महाराज जिन्होंने तीन गुण स्थानों तक अशुभ उपयोग कहा था वो मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग है ऐसा कथन कर रहे हैं। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जो उन्होंने तीन गुण स्थानों तक अशुभ उपयोग कहा है उसका सही अर्थ अपनी समझ में ना आ रहा हो? क्योंकि अपन क्या समझ रहे हैं कि तीन गुण स्थान तक अशुभ उपयोग ही होता है, ये ही अपन समझ रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा है, वो अगर कहते तो फिर समय सार की टीका में और प्रवचन सार की टीका में वो मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग क्यों बताते, कैसे बताते? बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि दो दो भंग बनते हैं। बता रहे हैं या तो एक विकल्प तो ये बनता है कि वो भूल गए, वो भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था वहां, और भूल करके यहां पर भूल से बता रहे हैं। और दूसरा विकल्प ये बनता है कि उन्होंने वो कहा ही नहीं था जो समझने वालों ने समझ लिया, और इसकी संभावना 100% बनती है कि समझने में चूक हो सकती है, आचार्य की वाणी में चूक नहीं हो सकती। तो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इस सूत्र का थोड़ा विस्तृत विवेचन हुआ आज। महत्व का सूत्र था, जानकारियां बहुत थी इसमें, और कई ग्रंथों का आधार भी अपन ने लिया। फिर एक प्रश्न है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो सावधानी से सुनना, हो सकता है पुरानी धारणा कुछ और हो, लेकिन यहां पर आचार्य इस तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष शास्त्र में, इसका एक नाम मोक्ष शास्त्र भी है, आचार्य कह रहे हैं पुनात्यात्मानं पूयते नेनेति वा पुण्यम्, जो आत्मा को पवित्र करे अथवा जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो जाए उसको पुण्य कहते हैं। तत् सद्वेद्यादि, वो साता वेदनी आदि है, क्योंकि साता वेदनी के अभाव में देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलता, पाप के उदय से नहीं मिलते देव शास्त्र गुरु। और पाति रक्षति आत्मानम शुभादिति पापम, जो आत्मा की रक्षा करता है वो पाप है। किससे रक्षा करता है? भलाई से, अच्छाई से, शुभ से। जो आत्मा को शुभ से बचा के रखता है, अशुभ में फंसा के रखता है, उसका नाम पाप है। असद वेद्यादि, उसका नाम है असाता वेदनी आदि। जैनम जयतु शासनम।